पृष्ठ संख्या 43, रामानंद और उनका श्री संप्रदाय। संत कवियों में रामानंद और उनके शिष्य परंपरा के कवि आते हैं। रामानंद ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके शिष्यों में कबीर ब्रैकेट में जुलाहा, रैदास, चमार तथा सेन, नाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रामानंद के 12 शिष्य इस प्रकार थे: अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावत, नरहरि, पीपा भावा, नंद, रैदास, धन्ना सेन, धरहरि। वस्तुतः रामानंद ही दक्षिण और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की कड़ी थे, जिन्होंने कबीर, नानक और चैतन्य के सुधार आंदोलनों की बृहद पृष्ठभूमि तैयार की। रामानंद राम नाम के उपासक थे। उन्होंने सीताराम की उपासना का आदर्श सामने रखा। इस दृष्टि से वह हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं और संत काव्य परंपरा के भी। यह रामानंद का व्यक्तित्व था जिसने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को एक नवजागरण का आंदोलन बना दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को ही नवजागरण का पहला सोपान कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु की संज्ञा दी है, जो उनके विशाल वट व्यक्तित्व को देखते हुए उचित ही लगता है। ऐसे रामानंद के गुरु दक्षिण के संत राघवानंद थे, जो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते थे। इस दृष्टि से रामानंद भी रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के शिष्य ठहरते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भाषा परिक्षेत्र की दृष्टि से बताया है कि संत कवियों में कबीर साहब, रैदास, बुल्ला, गुलाल, भीखा, धरणी, कमाल, दरिया और कीनाराम आदि भोजपुरी क्षेत्र के मलुकदास, जगजीवन दास, दूलन, भीषण, पलटू आदि अवधि क्षेत्र के गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बुल्ले शाह, फरीद, गरीब दास आदि पंजाबी क्षेत्र के दादू, रज्जब, सुंदरदास, रामचरण, पीपा, आनंद घन, धन्ना, दीन दरवेश आदि राजस्थानी के तुलसी साहब, शिवदयाल, यारी साहब, बावरी आदि ब्रज क्षेत्र से संबंधित थे। संतों की बहुत सी रचनाएं फारसी, गुजराती, मराठी, सिंधी, संस्कृत आदि भाषाओं में भी पाई जाती हैं। दो, सूफी या प्रेम काव्य धारा। मध्यकालीन भारतीय परिवेश में सूफी मत इस्लाम का अत्यधिक रोचक पक्ष था। भारत में इसका आगमन दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के पहले ही हो गया था, लेकिन तुर्की शासन की स्थापना के उपरांत विभिन्न इस्लामिक देशों से भारत में सूफियों का आव्रजन हुआ, जो हिंदुस्तान के अनेक भागों में आकर बस गए। भारतवर्ष में इनका प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ब्रैकेट में 12वीं सदी के समय सिंध प्रांत से माना जाता है। जैसा कि हम पूर्व में पृष्ठ संख्या 44 बता चुके हैं कि भारत में सूफियों के चार संप्रदायों का सिलसिला चल निकला: चिश्ती संप्रदाय ब्रैकेट में 12वीं सती, सुहरावर्दी संप्रदाय ब्रैकेट में 13वीं सती, कादरी संप्रदाय ब्रैकेट में 15वीं सती और नक्शबंदी संप्रदाय ब्रैकेट में 17वीं सती। इसमें भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रसार चिश्ती संप्रदाय का ही हुआ। इसके अतिरिक्त मेहंदवी और सत्तारी संप्रदायों का भी नाम मिलता है। सूफी शब्द इस्लामी रहस्यवाद के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है। इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार साफी ब्रैकेट में पवित्र युवकों का एक दल था जो बाद में सूफी कहलाया। इसी प्रकार सुफ्फा शब्द भी मिलता है, जो मदीने की मस्जिद के सामने बैठने वाले फकीरों के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता था। इसके लिए एक अन्य शब्द सूफिया भी मिलता है, जिसका अर्थ है ज्ञान या भक्ति विशेष। कुछ लोग सूफी शब्द का प्रयोग सूफ या सफ़ेद ऊनी वस्त्रों के लिए करते थे। इस प्रकार इस शब्द के एकाधिक अर्थ मिलते हैं। ज़्यादातर विद्वानों की मान्यता यही है कि सूफी शब्द अरब और ईरान के उन व्यक्तियों को सूचित करता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोंगा पहनते थे तथा विरक्तों एवं सन्यासियों का सा जीवन व्यतीत करते थे। निर्गुण निराकार के उपासक ए सूफी साधक प्रेम पंथ के पथिक थे। संत कवियों के ज्ञान मार्ग की जगह ये प्रेम मार्गी थे। संत कवियों से अत्यधिक वैचारिक साम्य होने के बावजूद सूफियों की अवधारणाओं में कुछ अंतर भी हैं। जैसे संत साधकों के रूपक और प्रतीक तत्वों में जहाँ दाम्पत्य मूला भावों में संतों ने परमात्मा को पति या स्वामी और अपने को उसकी पत्नी या दास दासी माना है, तो सूफियों ने परमात्मा को पत्नी तथा जीवात्मा को पति रूप में चित्रित किया है। संतों ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए मुक्तक काव्य रूप को चुना है, तो सूफियों ने प्रबंध को। मध्ययुगीन सूफी प्रेमाख्यान काव्यों के निर्माण में फारसी प्रेमाख्यानों जैसे लैला मजनू, शीरी फरहाद, यूसुफ जुलेखा, भारतीय प्रेमाख्यानों जैसे पुरुरवा उर्वशी, नल दमयंती, उषा अनिरुद्ध, माधवानल काम कंदला, कृष्ण और राधा आदि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूफियों ने अपने काव्य की रचना फारसी की मसनवी शैली ब्रैकेट में अर्थात प्रेमाख्यान शैली में की है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रारंभ मुल्ला दाऊद की कृति लोरिक चंदा या चनैनी या चंदायन ब्रैकेट में 1379 ईस्वी से माना जाता है। यह सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है। इसकी भाषा अवधी है। सूफियों की सभी कृतियाँ ठेठ अवधी भाषा में हैं। मुल्ला दाऊद के अतिरिक्त कुतबन कृत मृगावती ब्रैकेट में मृगावती, जायसी कृत पद्मावत, मंझन कृत मधुमालती पृष्ठ संख्या 45, उस्मान कृत चित्रावली, नूर मुहम्मद कृत इंद्रावती और अनुराग बासुरी, शेख नवीकृत ज्ञानदीप, जानक विकृत केवलावती, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर, हुसैन अली कृत पुहपावती, शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा, ख्वाजा अहमद कृत नूर जहां आदि इस परंपरा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सूफियों की देखा देखी मध्यकाल में कुछ अन्य असूफी रचनाएं हिंदू कवियों द्वारा हुई, जिनमें कवि दामोह कृत लखन सेन पद्मावती, ईश्वर दास कृत सत्यवती, नारायण दास की छिताई वार्ता, कवि साधना कृत मैनासत, गणपति माधव शर्मा कृत माधवानल काम कंदला, जटमल नाहर कृत प्रेम विलास, परशुराम कृत उषा अनिरुद्ध की कथा, पुहक कृत रसरतन आदि इस परंपरा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। असाहित कृत हंसावली भी इसी प्रेमाख्यानक परंपरा की कृति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन ब्रैकेट में 1379 ईस्वी को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतबन कृत मृगावती ब्रैकेट में 1501 ईस्वी को सूफी प्रेम काव्य परंपरा की पहली कृति माना है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा ब्रैकेट में 1501 ईस्वी को, तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में असाहित कृत हंसावली ब्रैकेट में 1370 ईस्वी को इस परंपरा की पहली कृति माना है। किंतु प्रेमाख्यान के लक्षणों के आधार पर सर्वाधिक विद्वानों ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को ही सूफी काव्य परंपरा की पहली कृति माना है। इसमें जायसी का पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का गौरव ग्रंथ है। वर्ण विषय और कथानक रूढ़ियाँ। सूफियों के काव्य का वर्ण विषय प्रेम है, जो लौकिक अलौकिक दोनों रूपों में दिखाई पड़ता है। इस प्रेम वर्णन का आधार कोई इतिहास पुराण या लोक प्रचलित कथा होती है, जिसमें कल्पना और इतिहास का मिश्रण होता है। डॉक्टर चंद्रबलि पांडे ने अपने ग्रंथ तसव्वुफ अथवा सूफी मत में सूफी सिद्धांतों के आलोक में इस पर विस्तार से चर्चा की है। कुछ कथानक संबंधी बातें सभी सूफी प्रेमाख्यानों में दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें सूफी कथानक रूढ़ियाँ कहा जाता है, जो कमोबेश सभी प्रेमाख्यानों में मिलती हैं। जैसे एक मसनवी शैली से कथा का आरंभ। मसनवी का अर्थ है गुरु ईश्वर और पैगंबर की वंदना तथा तत्कालीन साहेब वक्त, उस वक्त के शासक का नाम, उसकी प्रशंसा और कथा कहने के उद्देश्य का उद्घाटन। दो प्रेमाख्यानक ग्रंथों के नाम अक्सर वती ब्रैकेट में नायिकाओं के नाम पर होते हैं ब्रैकेट बंद, जैसे मृगावती, पद्मावती, पुहपावती, सत्यवती, इंद्रावती, मधुमालती आदि। इसमें कल्पना और इतिहास का मिश्रण बहुत ही रोमांचित तरीके से होता है। पृष्ठ संख्या 46। तीन नायक नायिका का जन्म किसी दैवी अनुष्ठान से होता है। नायिका किसी दिव्य विशेष की वासनी होती है, जैसे सिंहलद्वीप, मलयद्वीप, स्वर्णद्वीप, रत्नद्वीप आदि। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या किसी के मुंह से सुनकर नायक उसके सौंदर्य पर रिझता है तथा पंडित, ब्राह्मण या भिक्षु का भेष धारण कर उसकी खोज में निकल पड़ता है। किसी मंदिर या फुलवारी में नायिका से वह मिलता है। 4. सूफी कथा आख्यानों में यह भी देखा जाता है कि नायक एक से अधिक सुंदरियों से प्रेम करता है तथा किसी ऋषि मुनि, सिद्ध या योगी की सहायता से वह उसे प्राप्त करने में सफल होता है। 5. इन कथाख्यानों में प्रायः यथार्थ का अभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें रहस्य से भरी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं, अविश्वसनीय और अलौकिक बातें, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अपशकुन, विचार, अभिशाप, वरदान आदि का भी वर्णन देखने को मिलता है। प्रसंगों के वर्णन में अनुभूति, कल्पना, आवेग तथा रोमांस का प्राधान्य होता है। संस्कृत साहित्य में अनेक गद्य कथा आख्यानिकाओं में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। सुबंध के स्वप्नवासो दत्ता, बाढ़ की कादंबरी तथा दंडीकृत दशकुमार चरित इसी प्रकार की रचनाएं हैं। इसकी लोकप्रियता उत्तरवर्ती अपभ्रंश प्रेम कथाओं जैसे पुष्पदंतकृत, यशोधर चरित, नागकुमार चरित, धनपाल की भविष्यदत्त कथा आदि। प्रेमाख्यानक काव्यों ने इसमें से अनेक तत्वों का अनुसरण करते हुए अपनी कल्पना से उसमें नवीन बातों का भी समावेश किया है। यही कारण है कि काव्यत्व की दृष्टि से इन कथानकों में स्वाभाविकता की जगह वैचित्र्य, औत्सुक्य तथा कौतूहल अधिक है। इसमें अरस्तु के ट्रेजिडी की भांति कुछ का अंत दुखात्मक होता है तो कुछ का सुखात्मक। इनके कथा वर्णनों में अतिशयोक्ति की प्रधानता होती है। सूफी प्रेम दर्शन में साधना की 4 भूमियाँ मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: 1. शरीयत, आलमे नासुत भौतिक जगत; 2. तरीकत, आलमे मलकूत चित्त जगत; 3. हकीकत, आलमे जबरूत आनंदमय जगत; 4. मारिफत, आलमे लाहूत सत्य जगत। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नायक इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर तय करता है। शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, पाक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि का वर्णन भी इसमें मिलता है। मुसलमान कवियों ने मुसलमान होकर भी इसमें हिंदू देवी देवता तथा कथा कहानियों को आख्यान का आधार बनाया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि इन्वर्टेड कामा, इन्होंने मुसलमान होकर भी पृष्ठ संख्या 47 हिंदुओं की कहानियों हिंदुओं की ही बोली में पूर्ण तन्मयता के साथ पेश कर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनी अवस्था के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। इन्वर्टेड कॉमा बंद। सूफियों ने इसके लिए प्रबंध काव्य स्वरूप का अवलंब ग्रहण किया है, जिसमें सर्ग के स्थान पर खंड होते हैं। अकेले पद्मावत की कथा में 58 खंड हैं। सूफी कवियों के प्रेम प्रसंगों की वर्णन शैली अत्यंत मार्मिक एवं सूक्ष्म है। श्रृंगार रस अंगी और अन्य रस अंग हैं। इतिवृत्तात्मकता और ऊहा की प्रधानता है। भाव व्यंजना का वैभव व्यापार सर्वत्र देखने को मिलता है। इन्होंने रूपक तत्वों के माध्यम से कथा के चरित्रों को एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक रूप भी दिया है। जैसे पद्मावत में रत्नसेन जीव का तो पद्मावती ब्रह्म का प्रतीक है, इसी प्रकार सुआ हीरा मनगुरु का तो नागमती दुनिया धंधा ब्रैकेट में सांसारिक मोह का प्रतीक है। राघव चेतन और अलाउद्दीन आश्रित शक्तियों के प्रतीक हैं। सूफी कवियों की भाषा ठेठ अवधी है, जिसमें अनेक देशज शब्दों की भरमार है। यह तुलसी आदि की तरह परिनिष्ठित अवधी नहीं है। दोहा चौपाई इनका मुख्य छंद है। उपमा रूपक, सांग रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, मानवीकरण, पुनरुक्ति आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। श्रृंगार के वियोग चित्रण की जो उदात्तमय ऊंचाई सूफी कविता में है, वह हिंदी की किसी अन्य कविता में नहीं। प्रेम और उदार मानवता का जो संदेश सूफियों ने संपूर्ण समाज को अपनी काव्य साधना के माध्यम से दिया है, वह भी अद्वितीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि इन्वर्टेड कामा, यह साहित्य हिंदी का महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें मनुष्य के हृदय की वास्तविक तड़पन ऐसी व्यक्त हुई है जो जाति, देश और संप्रदाय से परे है। नॉट का मन। अन्य अनेक विद्वानों ने भी सूफी काव्य के प्रदेय का ऐसा ही मूल्यांकन किया है। झा निर्गुण काव्य की उपलब्धियाँ। निर्गुण काव्य धारा के संत और सूफी कवियों ने ब्रह्म के अनिवर्चनीय निर्गुण निराकार रूप की प्रतिष्ठा की तथा उसे प्रेम और ज्ञान स्वरूप मानकर अपरोक्षानुभूति का विषय बताया। उस परम आध्यात्मिक सत्ता का प्रकाश घट घट में व्याप्त है। हर जीवात्मा के भीतर उसी का कण प्रकाशित हो रहा है। इसलिए मनुष्य मनुष्य के बीच संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, ऊंच नीच आदि के कारण भेदभाव करना अज्ञानता है। पंडित हो या मुल्ला, ब्राह्मण हो या शूद्र, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी ऐसा करता है वह अंधकार में भटक रहा है। वेद पुराण, कुरान, कतेब में जो कुछ लिखा है उसे आँख मूंद कर सत्य नहीं, पृष्ठ संख्या 48, मान लेना चाहिए, बल्कि तर्क, अनुभव और ज्ञान की कसौटी पर कसकर तब उसे स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। संतों ने ज्ञान मार्ग द्वारा तो सूफी साधकों ने प्रेम पंथ द्वारा उस तक पहुँचने, उसे प्राप्त करने का रास्ता बताया, जिसमें गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें सभी प्रकार के बाह्य आचार या दिखावे का खंडन कर आत्मिक शुद्धि, चित्त की निर्मलता और हृदय की पवित्रता पर बल दिया। सभी प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जिसने उस विश्वात्मा के साथ तादात्म्य कर लिया, उसी का जीवन सार्थक होता है। निर्गुण कवियों ने अत्यंत ही सादगी के साथ लोकभाषा की सरसता में जनता को उपदिष्ट दिया, तो सूफी फकीरों ने हिंदू कथा कहानियों के माध्यम से प्रेम का मार्ग अपनाकर लोगों का दिल जीतने का कार्य किया। संतों और सूफी साधकों ने स्वयं अनाशक्तिमय विरक्तों सा जीवन जीकर लोक के सामने त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, मानवतावाद का उच्च आदर्श स्थापित किया। उनके इस व्यक्तित्व ने सामान्य जनता से लेकर समकालीन शासकों तक को प्रभावित किया। हिंदी की निर्गुण काव्य धारा की भावभूमि के केंद्र में आध्यात्म के होने के बावजूद मनुष्यत्व को जो ऊंचाई प्राप्त हुई है वह अद्वितीय है। संतों की कविता यदि भक्ति रसायन है तो सूफी कवियों की कविता प्रेम रसायन, जिसमें इन कवियों के विरक्त और निर्मल हृदय के सच्चे उद्गार अत्यंत तन्मयता के साथ व्यक्त हुए हैं। चित्त को लोक भूमि में प्रतिष्ठित कर युग जीवन की संवेदना को आत्मसात कर समस्त प्रकार की संकीर्णताओं को तोड़कर इन कवियों के काव्य में उदात्त मानवता का जो स्वर उद्भाषित हुआ है वह हिंदी कविता में विरल है। यह संकलन हिंदी के परास्नातक विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, अतः यह हिंदी के पंडित जनों के लिए नहीं है। इसे तैयार करने में जिन कवियों और विद्वानों की कृतियों से मैंने सहायता ली है उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। इसमें तृतीय और चतुर्थ सत्र को मिलाकर 3 प्रश्न पत्रों की सामग्री को विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक ही साथ संकलित कर दिया गया है। आशा है यह संकलन अपने उद्देश्य को अवश्य ही अर्थवान बनाएगा। दिनांक 15/5/2015, राकेश कुमार द्विवेदी।